Krishna, 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 Hare. चक्षुरोन् मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत् कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणदलिता शेषाकान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते दे प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पदुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के अंतर्गत पांचवा छठा और सातवां तीन श्लोकों को चर्चा किया, जिसमें मुख्यतः ये चर्चा किया कि परेह भुवन बहवो योगिनस, बहुत सारे योगी लोगों ने योगियों ने आपका भक्ति करके खास करके श्रवण कीर्तन करके और आपको प्राप्त किए, पराम गति को प्राप्त किए। हे अच्युत, आपकी कथा का श्रवण करके पतोपनीतया आपका पराम गति, एक बार जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं, ऐसे गति को प्राप्त किए। ये इससे साज साबित होता है कि आपका जो भक्ति है भले ही महान है, फिर भी वो सुलभता से प्राप्त हो सकता है और उसका रास्ता ही बहुत सुगम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया है, तो अवेलेबल है। और दूसरा बहुत सरल है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कथोपनीतया आपकी कथा का श्रवण करना होगा, ये करने से पराम गति को प्राप्त होगा। ये पांचवें श्लोक में चर्चा किया। बाद में छठे श्लोक में ऐसे लोगों का वर्णन है जो आध्यात्मिक मार्ग तथाकथित आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं और शुद्ध होने की क्रियाओं को, तपस्याओं को, अनेकों विधियों को करते हैं, उनको क्या प्राप्त होगा। तो कहा गया है कि भगवान का स्वरूप का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा उनको। हो सकता है कि ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, दे कैन गेट दिस थिंग। जो भगवान का जो अगुणस्य तथापि भूमम महिमा अगुणस्य ते, आप महान हो जो अगुणस्य अगुण स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म है, उसका जो साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। और अंतरात्म भी स्व अनुभवात् अपने हृदय में जो परमात्मा है उसका भी अनुभव कर सकते हैं कि अन्य बोधात्मतया च नान्यथा। इसके अलावा अन्यथा जो दूसरा तीसरा वस्तु है भगवत स्वरूप, उसका ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होगा। बाद में कल चर्चा किया सातवां श्लोक में, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में स्थापना करने वाले जो पांच श्लोक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन श्लोकों में ये सातवां श्लोक जो है वो सारवान श्लोक है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम। तो उन्होंने कहा कि विमातुम गिनती करना, आपके गुणों को गिनते गिनते थक जाएंगे या गिन नहीं सकते। इत्वावतीर्यस्य का ईश्वरस्य, तो आपके गुणों को गिनना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जो सुकल्पेर मतलब बहुत बुद्धिमान लोग, कालेन एर्वा विमता, बहुत बहुत कालों के संघर्ष करने के बाद भू पामसवह खे मिखिला द्युभासहा, ये चार चीजों के अंदर जो पामसहा अणु है उनको गिन सकते हैं। कहाँ? भू खे, भू मतलब भूमि, खे मतलब आकाश, और मिखिला मतलब ये हिम, और द्युभासहा मतलब अंतरिक्ष। ये चारों जगह की जो अणु हैं उनको गिन सकते हैं, लेकिन आपके गुणों को गिन नहीं सकता, आपका गुणों को माप नहीं सकता अपनी बुद्धि के द्वारा। तो हम कल गुणात्मनस्ते, भगवान का नाम इधर गुणात्मना कहा गया है, इसका दो व्याख्या हमने सुना। जो भगवान का शरीर जो है वो सुंदर और अद्भुत गुणों से अनंत गुण संपन्ना नारायण, इसी बात रामानुजाचार्य के स्वयं व्याख्या के अनुसार गुणों से संपन्न युक्त भगवान है, तो इसलिए उनको गुणात्मना कहा गया है। और दूसरा अर्थ है गुणात्मना का, सारे गुणों का आत्मा, यानी जो गुण भगवान की सेवा में नहीं लगते वो गुण तो मरा हुआ समझ लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा रहित शरीर मरा हुआ माना जाता है, भले कितना भी सुंदर गुण भी क्यों ना हो। जैसे दया नामक गुण भी है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, वो दया जो है उसका कोई काम नहीं है, वो भौतिक माना जाता है। जिस प्रकार हमने कल अर्जुन का ये उदाहरण दिया, भगवद्गीता में अर्जुन बहुत दया दिखाना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, क्योंकि वो गुण भले ही युद्ध करना, किसी को मारना, ये क्रोध, ये भले ही लगता है कि दुर्गुण है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में है वो दिव्य हो जाता है, वो अद्भुत हो जाता है। ये गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम, तो भगवान आपके गुणों को कोई गिन नहीं सकता है। और इतना महान, इतना ऐसे महान गुणों से युक्त भगवान, आप क्या किया, अवतीर्यस्य हितावतीर्यस्य, भक्तों की हित के लिए आप अवतरण ग्रहण किए श्रेष्य। तो आपका ये स्वभाव है कि भक्तों को अपने आप, भक्तों के सामने अपने आप को दर्शा देते हो, जिस प्रकार आपने मेरे सामने प्रकट किया इस सुंदर रूप को, इसलिए भक्ति के द्वारा ही आपको जाना जा सकता है, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है। इस चीज को इन 5 श्लोकों में स्थापना करके ब्रह्मा जी 8वां श्लोक में इस भक्ति को कैसे करना चाहिए वो बताते हैं। कल जैसे मैंने इस बात को परिचय दिया था इस श्लोक का, कि जहाँ कहीं भी भक्ति मार्ग का वर्णन हुआ है, भक्ति की विधि विधानों का वर्णन हुआ है, सारे विधि विधानों को निचोड़ करके, कंप्रेस कर करके एक श्लोक में अगर फिट करना है तो ब्रह्मा जी ने फिट करके दिया। तो समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ये श्लोक को अपने जीवन में उतार लेता है तो भक्ति मार्ग एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर सब कुछ है। तो उच्चारण करें, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे मैंने कहा कि भागवत के इस प्रसंग में 3 श्लोक महत्वपूर्ण है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में, जो याद कर लेना चाहिए, बहुत बार बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं। एक है ज्ञाने प्रयासम, इस अध्याय का 3रा श्लोक, और ये 8वां श्लोक, ये 2 श्लोक है, आगे आएगा और एक 3रा श्लोक, उसके वर्णन बाद में करेंगे। मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो मुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् मुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वा गोपवेर्विदधान्मनस्ते हृद्वा गोपवेर्विदधान्मनस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो मुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् मुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वा गोपवेर्विदधान्नमस्ते हृद्वा गोपवेर्विदधान्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। समीक्षमाणो पुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। इस श्लोक में आखिरी शब्द अति महत्वपूर्ण है, दाय भाग। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिताजी का संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए पुत्र को क्या करना पड़ता है, केवल इंतजार करना पड़ता है। उस पुत्र का पिताजी का संपत्ति के ऊपर अधिकार बनता है, उसी प्रकार एक भक्त का मुक्ति उसके लिए ऐसा अधिकार बनता है। भगवान कृष्ण वो मुक्ति प्रदाता है, मुकुंदा है। तो मुक्ति जो है भगवान की संपत्ति है, इसलिए उनको मुक्ति पदे कहा गया है। कृष्ण का एक नाम है मुक्ति पदे, द गिवर ऑफ लिबरेशन, और मुक्ति पदे मुक्ति का जो स्थान है वो उनकी चरण कमलों में है। तो ये जो मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं, भक्त को कैसे मिलता है मुक्ति? ऐसा मिलता है मानो कि पिताजी का संपत्ति प्राप्त हो जाता है, नहीं, इट बिकम्स हिज राइटफुल क्लेम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लिबरेशन बिकम्स हिज लाइफ राइटफुल क्लेम फॉर ए डिवोटी। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, कैसे उस मुक्ति को प्राप्त करें। तो इधर मुक्ति मतलब क्या है, सबसे पहला चर्चा करेंगे। मुक्तिरित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति मतलब हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम मतलब क्या है? अलग रूप, जो यथार्थ रूप छोड़ के अन्यथा रूप। हमारी यथार्थ रूप क्या है? जीवेर स्वरूपो है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इस स्वरूप को छोड़ के कोई अन्य रूप को धारण करेंगे। अन्य रूप मतलब क्या है? मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, कितने भी रूप हैं, ये सब रूप अन्यथा रूप कहा गया है। हित्वा अन्यथा रूपम मतलब इसको त्याग करना है। इसे भक्ति के परिभाषा में कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से मुक्त होना। उपाधि मतलब पहचान, आइडेंटिटी। हमारा मूल अज्ञान यही है, अपना पहचान, हमारा कार्य क्रिया सोच विचार सब कुछ अपने पहचान से, पहचान के ऊपर आधारित है। जैसे अपने आप को पहचानते हैं, आप उस प्रकार सोचते हैं, उस प्रकार करते हैं। अगर अपने आप को एक बच्चे के रूप में सोचेंगे तो बच्चे जैसा कार्य करेंगे, बच्चे जैसे सोचेंगे। अपने आप को कोई एक कंपनी का मालिक के रूप में पहचान करें तो मालिक के जैसे व्यवहार करेंगे। तो ये सब उपाधियां हैं। आयुर्वेद के अनुसार उपाधि मतलब व्याधि, उपाधि से व्याधि बनता है। यानी आदि मतलब एक्सेट्रा। शुद्ध जीव में जब तीनों गुणों का मिश्रण होता है, आदि मतलब कुछ और का मिश्रण हुआ, तो तुरंत हमारी बद्ध अवस्था प्रारंभ होती है। तो ये उपाधियां ही हमारे बद्ध अवस्था का कारण है। सबसे पहला मिथ्या अहंकार का सृष्टि हुआ, तो मिथ्या अहंकार से सब कुछ भवबंधन शुरू हुआ। इसलिए भक्ति इसलिए बहुत पावरफुल चीज है, वो मिथ्या अहंकार जो भौतिक भवबंधन का जड़ है उसी के ऊपर बम डालते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को गिराना है तो उसको फाउंडेशन में बम डालिए तो बिल्डिंग अपने आप गिरेगा, और पहले माला दूसरा माला में बम डालेंगे तो हो सकता है कुछ माले गिर जाए, तो थोड़ा दीवार गिर जाएगा, लेकिन बिल्डिंग थोड़ा सा रहेगा। पूरा खत्म करना है तो बिल्डिंग को क्या करना है, वो फाउंडेशन में आपको बम डालना है। तो वैसे ही अन्य विधि जो है, जैसे ज्ञान कर्म योग, वो भी व्यक्ति के भवबंधन को काटने का सहयोग देता है, लेकिन पूर्णतया काट नहीं सकता, क्योंकि भवबंधन के अलग अलग स्तरों को ही अटैक करने वाला है। जैसे कर्म है, वो केवल शारीरिक और कुछ कर्मिक रिएक्शंस को खत्म कर सकता है कर्म। कोई ज्ञानी है तो वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं उन चीजों को वो खत्म कर सकता है, लेकिन जो जड़ है मिथ्या अहंकार उसको तोड़ने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो भक्ति जो है सीधा मिथ्या अहंकार के ऊपर अटैक करता है। इससे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मलता तभी प्राप्त होगा जब ये भक्ति करेंगे। तो मुक्ति मतलब क्या है? यही है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। ये मुक्तिरित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित होना। तो इधर प्रश्न उत्पन्न होता है स्वरूप में स्थित होना मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो इससे बहुत सुंदर सिद्धांत निकलता है कि जो भगवान का भक्ति करता है तो उसको मुक्ति ऑलरेडी प्राप्त है, खाली वो बस बैंक में रखा हुआ है। बस बैंक में रखा हुआ है मतलब क्या है? तो मान लीजिए कोई कोई पैसा है कि आपका नाम पे है, लेकिन बस 2 साल में वो मेच्योर होगा। कोई पॉलिसी है, समझ लीजिए कि ऐसे कुछ लोग बनाते हैं पॉलिसी, LIC पॉलिसी, ऐसा वो पहले से वो पैसा है उसका, लेकिन 2 या 3 साल में उसका मेच्योर होके बाहर निकलेगा। वो पैसा उसका ही है, ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन समय की बात है बस। यानी भक्त के लिए मुक्ति ऑलरेडी प्राप्त है लेकिन हाथ में नहीं है, बस उनके पिताजी के पास है। पिताजी बोलेंगे बेटा एग्जाम पास करो, दे देता हूँ, तुम्हारा ही है। उस हिसाब से एक भक्त ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन वो थोड़ा सा समय बाकी है। वो समय भी क्यों भगवान ने बाकी रखा, उसके विषय में श्री विश्वनाथ ठाकुर बहुत सुंदर सिद्धांत इधर बताते हैं। वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर इस श्लोक को समझेंगे। ऐसा क्यों है एक भक्त मुक्त होने के बाद भी वो 100% ये भगवत धाम जाना हो, सारे दुखों का निवृत्ति है, वो नहीं क्यों नहीं हुआ? तो इधर श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जिस दिन 100% शरणागत हो गए, गुरु के प्रति भगवान के प्रति हो गए, तो भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। हो गया, मुक्त हो गए, वी आर लिबरेटेड। लेकिन क्या रह गया है, हमारे अंदर अनेकों अनेकों जन्मों से एकत्रित हुआ जो संस्कार है या वासनाएं हैं वो रह गए। उसके वजह से शरणागत होने के बाद भी मन में कभी कभी इंद्रिय तृप्ति का विचार आता है, कभी कभी बहुत तीव्रता से आता है, कभी कभी एकदम ऐसा तीव्रता से आता है कि हम गलत कर्म बैठ जाएंगे। तो ये सिद्धांत जानना चाहिए कि एक भक्त जो शरणागत हुआ है उसका कोई पाप रिएक्शंस नहीं है, लेकिन अभी भी वो जो इंद्र तृप्ति के प्रवृत्ति मन में है, अभी ट्रेसेस है, उसका जो इंद्र तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है वो मन में अभी भी है। इसलिए कभी कभी वो मन में आता है, कभी वचन में आता है, कभी कभी क्रियाओं में आ जाता है। तो इसको देख के भक्त को ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, तो आ जाता है कहीं स्वभाववश दोषवश आ जाता है। इसलिए कोई भक्त इस प्रकार कहीं गलती कर देता है तो हमको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, भगवान भी सीरियसली नहीं लेते इस बात को। ये स्वभाव है, ये बद अवस्था से ऑलमोस्ट मुक्त हो गए, लेकिन हमारे मन में इस प्रकार की भी वासनाएं हैं। अभी इन वासनाओं से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक कहा गया है। क्या कहा गया, सबसे पहला भगवान की कृपा से ये निकलेगा, इसलिए भगवान का कृपा का इंतजार करना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट बताए इस श्लोक में। नंबर वन वो है तत्तेनुकंपा सुसमीक्षा मानो, इंतजार करो। कुछ भक्त लोग बताते, प्रभु जी अभी भी सब कुछ कर रहा हूँ, शरणागत हूँ, जो बोला सब किया जाता है, लेकिन अभी भी मन में जो विचार है वो जा नहीं रहा है। तो आप उसका चिंता मत कीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंतजार करो, क्योंकि भगवान की कृपा से ये पूर्ण तरीके से मिट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, यू हैव टू अवेट। तो सुसमीक्षमाण, ये शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुसमीक्षमाण मतलब इंतजार करना। जब कोई बहुत महत्वपूर्ण या बहुत सुंदर और अद्भुत चीज का इंतजार करता है, उनको दुनिया में क्या हो रहा है उसका कुछ परवाह नहीं रहता है कि नहीं? जैसे माँ एक बच्चे का इंतजार करती है, मान लो कि 3 बजे स्कूल से वापस आना है, बच्चा 3 बजे आया नहीं, 3:30 बज गया, तो इनका इंतजार इंतजार करते करते मान लीजिए अगले घर में, उनके बाजू वाले घर में कोई मर भी गया, बम भी फूटा, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ 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 ज्ञान उधर उधर जाता ही नहीं है। तो पूरा ध्यान एक ही चीज के ऊपर केंद्रित, मेरा बच्चा कब वापस आएगा। तो वैसे ही एक भक्त का जीवन इंतजार में बीत जाता है। इस प्रकार एक बड़ा भूखा व्यक्ति, उसको खबर आया मुझे बहुत भूख लग रहा है, उनको खबर मिला कि बस आधा घंटे में आ रहा है आपका भोजन आ रहा है, तो कैसे इंतजार करेगा वो, बार बार घड़ी देखेगा कब आएगा वो आधा घंटा, है कि नहीं? तो वैसे ही भक्त हमेशा इंतजार करता है कि कब भगवान की कृपा प्राप्त हो, व्हेन विल आई गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अस्तित्व में सारी प्रार्थनाओं में, इन ऑल द प्रेयर्स, श्री भक्तिविनोद ठाकुर का एक कथन है, हर प्रार्थना में द इंटीग्रल फैक्टर, हर प्रार्थनाओं में एक स्वाभाविक एक चीज रहता है, वो है भक्त की प्रार्थना भगवान भगवान से, हे भगवान मुझे आपका कृपा कब प्राप्त होगा। भले ही वो अलग अलग प्रकार हो, अलग अलग प्रकार की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन अंततः एक बेसिस यही है सारे प्रार्थनाओं का, ओ लॉर्ड व्हेन आर यू गोइंग टू शो मी मर्सी, कब कब आप प्राप्त होंगे, कब आपका दर्शन होगा, कब आप मेरे मुझे माफ करेंगे। ये जो इंतजार है ये हर प्रार्थनाओं में प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है। तो तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्त का जीवन इंतजार मात्र है। जैसे आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए तो ट्रेन अनाउंसमेंट होगा, ट्रेन थोड़ा सा लेट है, तो अधिकांश समय तो आधा घंटा एक घंटा लेट तो बोलते नहीं है, बोल दिया तो आपका बड़ा दुर्भाग्य है, बोलेंगे इनडेफिनेटली लेट। इंडियन रेलवे पे तो सुना ही पड़ता है कब आएगा ट्रेन इनडेफिनेटली लेट। तो आपको इनडेफिनेटली इंतजार करते रहो तो डेफिनेटली आएगा लेकिन इनडेफिनेटली लेट है। आप पूछो आएगा, हाँ आएगा, खास करके इधर ये एरिया में पूछेंगे ट्रेन कब आ रहे हैं, वो आएगा। मतलब कब आएगा वो कब आएगा मालूम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा स्थिति है। तो उसमें निश्चिंत रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भगवान प्राप्त होगा, और साथ साथ में धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। तो इधर हमको भक्ति का उपदेशामृत में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा है, उत्साह निश्चया धैर्य, उत्साह निश्चया धैर्य, ये तीन अति महत्वपूर्ण शब्द है हमारे लिए। सबसे पहला क्या है, उत्साह। भक्ति में उत्साह के बिना कुछ नहीं कर सकते। भक्ति क्या, भौतिक कार्य के लिए भी उत्साह चाहिए। तो निश्चया धैर्य, निश्चित रूप में भगवान मुझे रक्षा करेंगे, और धैर्य पेशेंस होना चाहिए। तो उत्साह के बिना जो धैर्य है वो तमोगुण माना जाता है, और धैर्य के बिना जो उत्साह है वो रजोगुण है। ये उत्साह और धैर्य दोनों होना चाहिए, साथ साथ में होना चाहिए। धैर्य मतलब पेशेंस, ये पेशेंस ऐसा चीज है जो अति महत्वपूर्ण है। ये पेशेंस को दूसरे शब्दों में बोला जाए टॉलरेंस, टॉलरेंस को सहनशीलता कहा जाता है। कोई चीज को आप प्राप्त करने की इंतजार कर रहे हो, आपको बहुत सहनशीलता चाहिए, क्योंकि ये सहनशीलता के बिना आप कोई भौतिक कार्य को भी संपन्न नहीं कर सकते, तो आध्यात्मिक की क्या कहना। तो इनडायरेक्टली इस श्लोक में सुसमीक्षमाणः ये शब्द के द्वारा क्या सूचित कर रहे हैं ब्रह्मा जी, हर भक्त को उत्साह निश्चय धैर्य होना चाहिए, खास करके ये तीनों को मिला के एक शब्द बोलेंगे उनको क्या होना चाहिए, बहुत टॉलरेंस होना चाहिए। क्योंकि भक्ति महान वस्तु है, इतना महान वस्तु है कि इस भौतिक जगत में ऐसा कोई चीज नहीं उसके साथ तुलना कर सकते हो, क्योंकि भक्ति भौतिक जगत का नहीं है, इट इज नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हम इस भौतिक जगत के कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते, थोड़ा सा टॉलरेंस नहीं कर सकते। अस्तित्व में भगवद्गीता के शुरुआत में ही भगवान कहते अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं ये जो शिक्षा दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मतत्व का ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जानने का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन भगवान अर्जुन को यही देते, यू शुड बी टॉलरेंट। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद्गीता का, दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक में, जहाँ भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमापायनो नित्यास्तान्त दीक्षस्य भारत। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेया, हमेशा अपना मन जो है इंद्रियों की इंद्रिय विषयों प्रति जाता है, भले ही वो जा रहा है, तुम अर्जुन क्या करो, तुमको सहन करो। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापायनो, आने पर भी क्या करो, तितिक्षुहा तुम सहन करो, वो आएगा, आने पर भी नहीं, वो आएगा, निश्चित रूप में आएगा, ये सबको परेशान करेगा। कि भौतिक जगत में हर हर एक वस्तु, जो भी भौतिक वस्तु आपके सामने आपके प्रसंग में, केवल आपको परेशान करने के लिए ही है। भगवद्गीता में भगवान दूसरे भगवद्गीता में प्रभुपाद पदार्पण लिखते हैं कि दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक में, कि भौतिक जगत का निर्माण हुआ है हमको परेशान करने के लिए, हमको परीक्षा लेने के लिए। तो एनी भौतिक, एनी मेटीरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी भौतिक वस्तु हो, हमको परेशान करने के लिए बनाया है। हम सोचते हैं कि ये वस्तु मुझे दुख सुख देगा, लेकिन वो बनाए गए आपको दुख देने के लिए। इट इज मेड टू गिव यू ट्रबल, तो उसका डिजाइन ही ऐसा है। भगवान ने ऐसा डिजाइन बनाया कि कोई भी वस्तु जितना ज्यादा इकट्ठा करो उतना ज्यादा दुख। सिंपल फॉर्मूला, इसका कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपल फॉर्मूला है, ये बनाया, पत्थर बनाया, जो भी बनाया हमको दुख देने के लिए बनाया। आप जितना वस्तु है घर में ला के रखेंगे उतना दुख को संग्रह कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो मात्रास प्रशास्त्र कौनते आगमा पाए क्या स्थानीय दीक्षा से भारत। तब प्रश्न होता है कि अच्छा आप सहन करो कहते हैं, सहन करने का फायदा क्या है, फायदा क्या है? तब भगवान तुरंत अगले श्लोक में कहते हैं कि एम ही नवेदन्त्येते पुरुषं पुरुषस्वा पुरुषं पुरुषस्वा समदुक्त सुखं धीरं सह अमृतत्वाय कल्पते। ये 14वां और 15वां श्लोक अति महत्वपूर्ण, इसके साथ संबंध में है ये श्लोक के साथ दूसरे अध्याय का भगवद्गीता का। तो तुरंत भगवान कहते हैं कि यम ही नवेदन्त्येते पुरुषं पुरुषस्वा, इस प्रकार जो जीता है समदुक्त सुखं धीरं, जो सुख और दुख को समान दृष्टिकोण से देखता है, वो समभावना बना के रखता है, उसको धीर कहा जाता है। और सह वो व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसे मुक्ति पदे सधाय भाग, भागवत में इधर जो कहा गया है उसी बात को भगवद गीता में भगवान कहते हैं। इस बात को सह अमृतत्वाय कल्पते, ही अटेन्स लिबरेशन। कौन? धीर। वो धीर कौन है? समदुखस्कम धीरम, सुख और दुख को समान दृष्टिकोण से देखता है। वो क्यों देखता है और कैसे देखता है? उनके उनको मालूम है कि ये जो सुख और दुख जो है भगवान की देन है, भगवान की अनुकंपा है। ये श्री विश्वनाथ ठाकुर कथन है। जो भक्त ये समझ लेता है कि सुख और दुख जो भी मेरे जीवन में आया वो भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। तो कैसे समझे भगवान की कृपा है? उदाहरण देते हैं श्री विश्वनाथ ठाकुर, जिस प्रकार पिताजी कई बच्चे को सुंदर सा जूस पिलाते हैं और साथ साथ में कभी कभी वो नीम का पत्ते का जूस भी पिला देते हैं। हाँ, कभी आम रस देते हैं, कभी नीम का जूस देते हैं। तो जब आम रस देते तो हाँ वंडरफुल, बहुत खुश, मेरा पिताजी बहुत अच्छे हैं। और जब नींबू नीम का रस पिलाया तो क्या खराब है पिताजी? नहीं, दोनों समय पिताजी यही पिताजी, दोनों समय हमारे हित के लिए दिया। हमारा जो शरीर तंदुरुस्त था, बच्चे का शरीर तंदुरुस्त था उस समय, और उसको पुष्टिकर बनाने के लिए उन्होंने जूस पिलाया। और जो बच्चा बीमार था, किसी कारण बीमार पड़ा, तो पेट का बीमारी, पेट में कीड़े पड़े, तो पेट का कीड़ा निकालने के लिए उनको क्या करना होगा? तो ये नीम का रस पिलाना पड़ा। तो आयुर्वेद में लिखा है अगर नीम का जूस पियेंगे तो क्या होगा, अपना पेट का जो बीमारी है, जो जितना भी दोष है, वो सब निकल जाता है। तो अस्तित्व में जब हमारे जीवन में दुख आता है, ये समझना चाहिए कि हमारे में, हमारे दिमाग में जो कीड़ा है उसको निकालने के लिए भगवान ने दुख दिया, और कोई कारण नहीं है। ये भक्त इस प्रकार सोचता है, ये भक्त मतलब जो सिद्धांत को जानता है, ये सिद्धांत को जानता है। जब हमारे दिमाग में कीड़ा होता है उसको निकालने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता भगवान को, इसलिए भगवान ने क्या कहे, लो दुख लो। तो जब दुख आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये मेरा दिल में जो हृदय में जो कीड़ा है उसको निकालने के लिए, जो इंद्रिय तृप्ति नामक कीड़ा है, जो मैं कंट्रोलर हूँ, ये जो कीड़ा है उसको निकालने के लिए। ऐसे अनेक उदाहरण दिया जा सकता है। श्री विश्वनाथ ठाकुर इसको समझाने के लिए दो उदाहरण देते हैं, एक तो इस दो जूस का, एक प्रकार एक तो दूध या जूस पिलाना, और दूसरा है कि नीम का जूस पिलाना। और दूसरा है पिताजी कभी कभी बच्चे को एकदम आलिंगन करेंगे, वाह वाह करेंगे, बेटा तुम्हारा ऐसा कोई नहीं है, बहुत प्रिय हो, लेकिन कभी कभी वही पिताजी उसको डांटेंगे, मारेंगे पकड़ के। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा बच्चा जो है बहुत अच्छा कार्य करता है तो आलिंगन करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ही भक्तों को उनके कर्म फलों को ऐसा प्रदान करते हैं कि मानो उन कर्म फलों को, कर्म फलों के सहारे से वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, अपने आप को शुद्ध कर सकता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए भगवान हमारे कर्मों को ऐसा अरेंज करके देते हैं। तो जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूँ, इसको थोड़ा इंग्लिश में कहता हूँ। जब आप रास्ते में जाते हो, मान लो सामने कोई पत्थर है, वो पत्थर को टुकरा के गिर सकते हो और उसी पत्थर के ऊपर पैर रख के लांग के आगे जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में कहते हैं इसको ए स्टेपिंग स्टोन एंड ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। द सेम स्टोन, वही पत्थर हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या है, आगे टुकड़ा के गिरने का साधन हो सकता है, और वही पत्थर हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन, पता नहीं स्टेपिंग स्टोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो उसके ऊपर पैर रख के ऊपर जाने का, आगे जाने का साधन बन सकता है, ऊपर चढ़ने का, आगे प्रवृत्त होने का साधन बन सकता है। तो वो पत्थर के ऊपर आधारित नहीं है, वो आधारित है हमारी दृष्टिकोण के ऊपर। अगर ये हमारी आंखों में ज्ञान है, ज्ञान चक्षुषा, ये श्लोक का ज्ञान की चक्षु से उस पत्थर को देखेंगे, यानी उस दुख को देखेंगे या उस सुख को देखेंगे, हमारे लिए वो पतन का भी कारण हो सकता है, हमारे लिए उसका आगे बढ़ने का कारण हो सकता है। आंख बंद किया तो वो स्टम्बलिंग ब्लॉक हुआ, आंख खोला तो स्टेपिंग स्टोन हुआ। तो आंख खोलना मतलब क्या है कि ओम ज्ञान ज्ञानंदस्य ज्ञानांजन शलाकय, ज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए जो परिस्थिति आ रहा है ये सबसे अच्छा परिस्थिति है मेरे लिए, और जो जो जहां जहां भगवान ने मुझे रखा है वो सबसे बेस्ट तरीके, बेस्ट जगह है मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए। नहीं तो जीवन भर जो इस ज्ञान को नहीं जानते, भक्त लोगों का हमेशा ये विचार रहता है इधर भक्ति नहीं हो रहा, उधर जाएंगे तो भक्ति होगा, उधर जाएंगे ना दीदी इधर भी थोड़ा ठीक नहीं है, उधर जाएंगे तो होगा। जीवन निकल जाता है केवल भौतिक परिस्थितियों को चेंज करने में। नहीं ये घर ठीक नहीं है, अभी ये वन बेडरूम हॉल है ना, अभी टू बेडरूम चाहिए, टू बेडरूम होता फर्स्ट क्लास, एक बेडरूम में जाऊंगा, पति पत्नी कोई झंझट नहीं, उसको लॉक करके मैं जपा करूंगा, पता नहीं उधर जाके सो गया कम से कम पति पत्नी का और झंझट के वजह से जगह तो था, कुछ तो कर रहा था, अभी वो भी खत्म हो गया। तो हमारी बुद्धि के द्वारा ये भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास मत करो। डोंट ट्राई टू चेंज द मेटीरियल सिचुएशन, ट्राई एंडीवर, प्रयास होना चाहिए केवल हमारी आध्यात्मिक प्रगति के। और भौतिक चीजें जो जो जरूरी है वो भगवान अपने आप टाइम पे देते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली कम। अगर इतना हो नहीं पा रहा है तो आप प्रयास मत करो। ठीक है, आपको ऐसा बुद्धि से ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऐसा होगा तो और अच्छा है, तो आके भगवान से मांग ले रहे हैं, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये होगा तो मुझे भक्ति में प्रगति होगा, अगर आप चाहे तो जरा वो दे देना। इतना कंसेशन भगवान ने दिया वो कर सकते हो, यदि आप चाहे तो। प्रभुपाद जी ने दिया तो इस बात के ऊपर थोड़ा चर्चा हुआ था कुछ दिन पहले, एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो क्या मांग सकते हैं भगवान से, तो मांग सकते हैं लेकिन इस प्रकार क्लॉज डाल के मांगिएगा। क्या मांगे कि भगवान यदि आप चाहे तो। प्रभुपाद जी ने कहा एक बार, उनके भक्त लोग प्रभुपाद जी के जितने शिष्य थे, प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, तो उस समय प्रभुपाद जी के पास पूछे कि प्रभुपाद जी भगवान से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए अच्छा स्वस्थ मांग सकते हैं क्या। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मांग सकते हो लेकिन एक क्लॉज डालिए, क्या है वो, यदि आप चाहे तो। तब उन्होंने प्रार्थना की श्री श्री माधव राधा माधव जी मायापुर में कि अगर आप चाहे तो हमारे श्री प्रभुपाद जी का जो स्वस्थ है वो उसको ठीक कीजिएगा। तो वैसे लोकनाथ महाराज का जब सेंटिनल समय में बहुत धन की आवश्यकता था, तो उस समय में वो राधा माधव से प्रार्थना किए, सारे सन्यासी बंधु भी प्रार्थना किया कि जय श्री श्री राधा माधव, अगर आप चाहे तो श्री प्रभुपाद जी की सेंटिनल फेस्टिवल को संपन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको धन प्रदान कीजिए। तो ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकता है, लेकिन एक वो प्रार्थना के पीछे हेतु क्या है, हमारी भक्ति का प्रगति, और दूसरा वो भी सरेंडर्ड भाव से, अगर आप चाहे तो। मैं एक उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले, एक दो तीन दो तीन महीने पहले, एक माता आए थे हमारे मंदिर में मेरा रोड में, बाकी हमको बहुत अच्छा लग रहा है सुबह दर्शनार्थी में आने में, लेकिन नहा नहीं पाती हूँ क्योंकि सुबह हमारा जो पानी भरने का जो टाइम है वो 7 से 7:30 बजे के बीच में होता है, दर्शनार्थी 7:15 बजे होता है, आ नहीं सकते। उन्होंने कहा ऐसे कह दिया बस, अब भगवान से प्रार्थना करो। तूने तीव्रता से प्रार्थना किया तो ऐसा एक महीने के बाद टाइम ही चेंज हो गया पानी का तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि हमारा जो प्रयास है भौतिक प्रयास को त्याग करना चाहिए। जैसे ज्ञाने प्रयासम उदपास्य हमने चर्चा किया, उसी प्रकार कर्मे प्रयासम उदपास्य, कर्मे प्रयासम, हमारी भौतिक परिस्थिति को चेंज करने के लिए प्रयास मत कीजिए, चेतना को परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो तत्तेन कंपांस समीक्षमाण हो, इंतजार करना चाहिए, वन शुड वेट। और कैसे इंतजार करना चाहिए, किसका इंतजार करना चाहिए, वो तो चर्चा किया, भगवान की कृपा का। और दूसरी बात क्या है, कैसे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इंतजार करने के समय में इंतजार कर रहे हो, रास्ते में बहुत सारा सुख और दुख आता है, कभी सुख कभी दुख, कभी कुछ आता है कि आपको मालूम नहीं है सुख या दुख है, वी डोंट इवन नो, कंफ्यूज थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पद कहते हैं कि लाद करी ताप करी मिश्रा, तीन प्रकार का स्थिति है, खाली दो ही नहीं, सुख और दुख नहीं है। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा एक स्टेप आगे जाके लाद करी, कुछ ऐसी परिस्थिति है लाद, मतलब तो सुख देने वाला है, और ताप करी, एक एक ऐसी परिस्थिति है ताप दुख है, और दोनों का मिक्सचर है, वो मिक्सचर ऐसा स्थिति है वो पूरा कंफ्यूज है, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ खुद को नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आते हैं हंसे या रोए ऐसी स्थिति है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत गिफ्ट दिया, 1 किलो का मिठाई दिया, तभी क्या खुश हो जाए कि रोए, क्यों? डायबिटिक है वो स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति इसको बोलते मिश्रा, मिक्सचर है, वो खुश हो गया क्योंकि मिठाई आया, दूसरी बात है कि वो डायबिटिक है। अभी जब वो मिठाई आए नहीं था तब तो ठीक था, लेकिन आ गया और परेशान हो गया। तो सच में अगर कोई जोक सुनना है तो कहीं और कहीं किसी का जोक सुनने की जरूरत नहीं है, ये भौतिक जगत को देखो वही बड़ा जोक है, दिस इट्स इज अ बिग जोक। तो एनी हाउ, तो समीक्ष मार गुंजान में आत्म कृतम विपाकम, भक्त कहता है कृतम विपाकम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसके अंदर लिखा हुआ है मैंने ही किया है विपाक, विपाक मतलब कर्मों का रिएक्शन, मैंने ही किया है, मेरा ही कर्म मुझे प्राप्त हो रहा है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सित प्रज्ञस्य का भाषा किम प्रभाषेता किम आसी तजेत किम, इस श्लोक के अर्जुन के जो 4 प्रश्नों के जवाब में भगवान सित प्रज्ञस्य का भाषा किम प्रभाषेता, सिद्ध ही एक भक्त किम प्रभाषेता कैसे बोलता है, कैसे बोलता है मतलब जो परिस्थितियां हैं सुख या दुख, उन परिस्थितियों को क्या बोलता है, व्हाट डज ही स्पीक मतलब है, हाउ डज ही रिएक्ट टू सिचुएशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं कि सितप्रज्ञस्य का भाषा मतलब ये नहीं कि वो कौन सी भाषा बोलता है, कि क्या वो हिंदी बोलता है इंग्लिश बोलता है, वो नहीं, का भाषा मतलब उनका भाषा एक जनरल चीज है जिसके द्वारा वो हर प्रकार की बातें कह सकता है। इसलिए व्हाट इज अ जनरल बिहेवियर ऑफ ए डिवोटी, वो एक उनका जीवन कैसे बिताता है, वो सित प्रज्ञस्य का भाषा है। और दूसरा प्रश्न क्या है, सितधिर किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है मतलब जब परिस्थितियां आती है सुख या दुख जो भी परिस्थितियां आती है उन परिस्थितियों को बोलता क्या है वो, व्हाट डज ही स्पीक आउट टू देम, हाउ डज ही रिएक्ट इन दोज सिचुएशंस। और स्थितधीर किम प्रभाषेता किम आसीता, वो कैसे बैठता है जब इंद्रिय विषय वस्तु उनके सामने आता है, वो कैसे अपने आप तो उससे निवृत्त हो जाता है, हाउ डज ही डिसएंगेज सेंसेस, किम आसीता हाउ डज ही सिट मतलब, व्रजेत किम कैसे चलता है मतलब, हाउ डज ही एंगेज सेंसेस, ये 4 प्रश्न अर्जुन का, उसका फिलोसॉफिकल मीनिंग्स है। मैं तो पहली बार पढ़ा था, मैं सोचा क्या है, कैसे चलता है कैसे बैठता है ये कौन सा है, और उसका जवाब तो भगवान ने तो दिया नहीं, वो कैसे चलता है मार्च पास जैसा चलता है, वो बैठता कैसे चेयर में बैठता इधर बैठता है, तो इसके पीछे कुछ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये नहीं हो। तो हम इस बात में 4 प्रश्नों में ये प्रश्न लेंगे, कौन सा है, स्थित प्रज्ञस्य किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य इतना सुंदर तरीके से लिखते हैं, जब मान लीजिए सुख आया तो भक्त उस सुख को क्या बोलता है, व्हाट डज ही स्पीक आउट, ये भक्त को बोलना चाहिए उस सुख को। मान लीजिए आपके किसी कारणवश आपको एकदम अत्यंत सुख आया, कोई अच्छा कोई किसी को धन प्राप्त हुआ है, या किसी को घर में संतान प्राप्त हुआ है, या किसी का कोई कार्यक्रम किया कुछ ऐसा हुआ बड़ा सुंदर सक्सेस हुआ है, तो किसी को सुविधा प्राप्त हुआ है, गाड़ी का सुविधा प्राप्त हुआ है, तो उन सुविधाओं को या उस सुख की परिस्थिति को क्या बोलना चाहिए। प्रभुपाद स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि वो परिस्थिति को बोलते हे परिस्थिति हे सुख तुम सुनो, सुख सामने है उनको, हे सुनो मेरे कोई योग्यता नहीं है तुमको प्राप्त करने का, भगवान अत्यंत कृपालु है, उनकी अनुकंपा है, मेरी योग्यता नहीं होने पर भी आपको मेरे पास भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि मैं उनकी सेवा और अच्छी तरीके से कर सकूं। मान लीजिए सुख का आपके सामने खड़ा है, आपको बोलना चाहिए। आपको मान लीजिए कहीं जाना है, रोज बस में जाते हो, कोई गाड़ी आ गया तो आपको मंदिर जाने के कोई भी कारण आ गया, तो ये सुख है, सुविधा है। तो वो सुविधा के समय भगवान को याद करना है। कैसे याद करना है? वो सुख को बोलना है, अस्तित्व मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे कर्मों पर भी नहीं, कुछ नहीं है, भगवान का योजना है, भगवान की कृपा है, उससे मुझे प्राप्त हुआ। हमारा जो भी सुविधा है, घर है, परिवार है, या कुछ भोजन प्राप्त होता है, कुछ भी सुखमय परिस्थिति है, तथागत सुखमय परिस्थिति है, ये भगवान की देन है। मेरी योग्यता ही नहीं है मुझे प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने का। ये क्यों दिया भगवान ने? ताकि मैं उनका और अच्छी तरह से सेवा करूँ। रोज पैदल जाते थे मंदिर, तो अचानक से गाड़ी आ गया, वेरी गुड, और अच्छा है कि नहीं? उसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है, भगवान ने भेजा है, मेरी योग्यता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों भेजा? ताकि मैं उनका सेवा और अच्छी तरह से कर सकूं। पहले तो खाली भगवान के एक घंटे का सेवा करता था, गाड़ी आए तो दो घंटे कर करूंगा। तो ऐसा बोलना चाहिए सुख को। और दूसरी बात, जब दुख आता है जीवन में तो क्या बोलना चाहिए? तो दुख आता है वो तो दुख को बोलना चाहिए, अस्तित्व में है दुख, सुनो, और ज्यादा दुख आना चाहिए था मेरे जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने बहुत कम करके भेजा है, ताकि मैं उनकी सेवा में और अच्छी तरह से जुड़ सकूं। दो जैसे एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी कि मान लीजिए किसी का उंगली कट गया, जैसे माता ने सब्जी काटते टाइम उनका उंगली कट गया, समझ लीजिए, सोचना चाहिए मेरा गर्दन कट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से खाली उंगली कटा। तो ये है भगवान की अनुकंपा। तत्तेनुकंपा से समीक्षमाणो भुंजानमेवात्म कृतम विपाकम। तभी तो ये दोनों चीजें, एक तो खाली इंतजार हुआ, खड़े होकर इंतजार करना, जब उस समय सुख दुख आता है तो वो तो दृष्टिकोण हुआ, उनको किस प्रकार देखना चाहिए, तब क्रिया क्या करें, मनुष्य डू ना, ऐसे थोड़े ना खड़ा रहेंगे। तीसरा लाइन में क्या कहा गया है? हृदय वाक वपुबेर, हृदय से, वाणी से और वपु यानी शरीर से, कर्मणा मनसा वाचा हृदवाक वपुबेर विदधाम नमस्ते। क्या कहा गया इधर? विदधाम नमस्ते। नमस्ते मतलब उनका शरण ग्रहण करना, विदधाम मतलब अर्पण करना, यानी भगवान को अर्पण करते हुए शरणागत होना। क्या चीजों को? हृदय वाक वपु, अपने हृदय और वाणी और वपु यानी कर्मणा मनसा वाचा, ये भगवान को अर्पण करते हुए शरणागत होना चाहिए। तो इसके विषय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये सब भक्तों को याद करने चाहिए, प्रायः याद होता है, लेकिन याद नहीं तो याद कर लीजिए। कुलशेखर आळ्वार इस श्लोक को रचना करते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावा करोम यज्ञ सकलम परस्मै श्री नारायणायेति समर्पयामि। उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रकृतेर स्वभावा। हर व्यक्ति का प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति स्वभाव, उनकी नेचर, उनकी नेचर और स्वभाव के अनुसार कर्मणा मनसा वाचा भजन करना चाहिए। कोई किसी और को देख के उसको नकल करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति भी अपना स्वभाव है। किसी को थोड़ा सा गुस्सा होने के स्वभाव है तो कोई तकलीफ नहीं है, तो वो स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाओ। किसी को इस प्रकार का स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार, किसी को गाने का स्वभाव है तो गा के भगवान की सेवा करो, प्रकृतेर स्वभाव। तो ये बहुत सरल है, अपने सहज है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना, इसलिए विदधाम कर्मणा मनसा वाचा या तत्तेनुकंपा समीक्षमाणो भुंजानमेवात्म विपाकम हृद्वाक उपवेर विदधाम नमस्ते जीवेत। ऐसा जो जीता है वो निश्चित रूप में मुक्ति पदे श्रद्धाय भाग, वो मुक्ति प्राप्त करने का वो योग्य बन जाता है, या मुक्ति जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है। तो ऐसा श्री विष्णु ठाकुर निकाल लिखना है, एज द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर मेंटेन्स द लाइफ ऑफ द सन, सो द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन एंड सर्विस टू द लॉर्ड मेंटेन्स द लाइफ ऑफ ए डिवोटी। तो ऐसा क्या चीज है, ये तीन चीजों को कैसे कर सकते हैं, यानी अभी जो हमने मेंशन किया, इंतजार करना, भगवान कृपा का। दूसरा है सुख और दुख को समभाव से देखना और सुख और दुख को ये इस प्रकार बोलना जैसे हमने अभी चर्चा किया। और तीसरा कर्मणा मनसा वाचा भगवान की सेवा करना। ये तीनों को करने के लिए भी एक प्रेरणा होना चाहिए। क्या है वो प्रेरणा? वो प्रेरणा श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं, वो प्रेरणा यही है, ये हमेशा याद रखना मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। इसके विषय में बहुत जगह बहुत सारे भक्तों को इस बात को कहता हूँ, ये एक ही कारण है हमारा कि शुरुआत में जिस भक्ति में जुड़े तो कितना उत्साह आता, अभी उत्साह क्यों कम हुआ। अपराध तो बात की बात है, लेकिन सिंसियर डिवोट भक्त को भी इस प्रकार अनुभव होता है, मैं जो पहले था शुरुआत में अभी उतना ही उमंग उतना ही आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों? तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम भूल जाते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। वो ABCD है। पहला लेक्चर आपको कौन सा लेक्चर सुना था? यही सुना था, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है कि नहीं? लेकिन उसके बाद हम सुना नहीं चाहते, ये तो सुना हुआ है ना, ये तो ABCD है। यही बड़ा तकलीफ है कि हम भूल जाते हैं इस बात को सुनना, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी भी जब भी कोई दुविधा आता है, कभी भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो ये कर रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा लगता है, आप बैठो शांति से भगवान के सामने, शांति से बैठ के जब करते हो सोचो, क्या सोचो, मैं इस कान में क्यों आया। जब पहली बार लेक्चर सुना था मैंने क्या सुना, पहला लेक्चर याद करो, तो मैं किसके लिए आया हूं, कहां जाना है, वो जीवन भर याद रखना है। नहीं तो क्या होगा कि एक रिचुअल हो जाएगा, भक्ति जो है एक रिचुअल, एक करने के लिए करना हो जाता है, क्योंकि बार बार इस बात को हमको याद रखना है, मैं किसकी प्राप्ति के लिए आया हूं, मैं किसके लिए आया हूं। तो ये स्वभाव है, ये भौतिक जगत का ही स्वभाव है कि पल पल में हमको रुकावट, दुख, अनेकों चीजें प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई भक्त है, बहुत प्रचार करना चाहता है, तो बड़ा उत्साह के साथ कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश किसी ने उनको उत्साह को तोड़ दिया, ऐसा हुआ तो तुरंत उनका मन दुखी हो जाता है, बोले कि ऐसा हुआ, बहुत कंप्लेंट करना। तब उनको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास आके शांति से जब करते हो सोचो कि मैं किसके लिए आया, भगवान आपको प्राप्त करने के लिए आना, ये सब चीज़ें तो बेकार है, ये सब चीज़ें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बड़ा इंस्पिरेशन का कारण है, व्हाई आई एम हियर, मैं किसके लिए आया हूँ। इतना हद तक कि एक बार मैं ये मूवमेंट ज्वाइन करने से पहले, अरे फुल टाइम ज्वाइन करने से पहले, मैंने एक भक्त से पूछा, मायापुर से वरिष्ठ भक्त है, उनसे पूछा ऐसा कौन सा चीज़ है मुझे हमेशा याद रखना है, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ अभी एक साल के बाद, या ऐसा मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर जीवन भर जिस उत्साह के साथ अगर आप जुड़े हो, अभी दिखाई पड़ रहा आपका उत्साह, पूरा जीवन भर इसी उत्साह के साथ इस काम में रहना चाहते हो, तो उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में इसको ज्वाइन करना, हर 6 महीने में इसको ज्वाइन करना। इसका मतलब क्या है कि हमेशा नया बन के रहना। अभी सच में हर वक्त सब लोग याद करके देखिए, शुरुआत में किस किस भाव से जुड़े और क्या था, क्या जोश था, लेकिन अभी क्यों नहीं है, केवल एक ही कारण है उसका। अपराध तो दूसरा कारण है, वो बाद में चर्चा किया जाए कभी, लेकिन एक ही कारण है, हम भूल गए कि मैं किसके लिए आया हूँ, व्हाई आई एम हियर, मैं केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और बाकी सब चीज़ें जो है वो आता है और जाता है। आई एम हियर टू गेट कृष्णा। तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज सो अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन सर्विस मेंटेन्स द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, ये जो है भक्त का जीवन को बना के रखता है। तो दस वाई लिविंग इन दिस वर्ल्ड डिवोटी रिमेन्स फिक्स्ड इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये हमेशा दृढ़ रहता है, क्यों, उनको मालूम है मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आया हूँ और कोई और कारण नहीं है इसका। और अंततः बाद में श्रीमद् भागवत में कहा गया, ओनली दे बिकम योर फेथफुल फॉलोअर्स आर दोज हुज ब्रीथ एक्चुअली अलाइव, अदरवाइज देयर ब्रीथिंग इज जस्ट लाइक द बेलोज। Once life becomes successful by seeing serving Krishna with devotion, otherwise the body is just like a bellows inhaling and exhaling air. जैसे अगर ये श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारता है, एक भक्त का जीवन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति का जीवन जो है कैसे हो जाता है, वो मरा हुआ शरीर अगर सांस देने लग जाए तो उसके जैसा है। अगर भक्ति में जीवित रहना चाहते हो दृढ़ता से, हमेशा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, कितना भी कुछ भी हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ डिवोशन कभी कम नहीं होने देना। अगर ऐसा स्थिति चाहते हो, ये श्लोक को अपना जीवन में उतारो। ऐसा ब्रह्मा जी आदि कवि है, आदि कवि मतलब सबसे पहला विद्वान, उनके विद्वत्ता से और परे कौन हो सकता है। वो सारे जितने भी अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस है, उसको संग्रह करके निचोड़ निचोड़ करके दबा दबा के एक श्लोक में दिया है। हृदय वाक बहुबेर मतलब हृदय से, हृदय से मतलब अपनी भगवान को हृदय से प्रार्थनाओं को अर्पण करना, हृदय के पुष्पों को अर्पण करना, वाक वाणी से मतलब उनको जप करना, कीर्तन करना, और वपु मतलब अपने शरीर से जम के सेवा करना, मतलब सब अभिधेय तीनों चीजों में हो गए। हृदय हृदय वाक विदधाम नमस्ते, विदधाम नमस्ते मतलब उनका अर्पण करते हुए शरणागत होना। कभी कभी कुछ लोग अर्पण करते हैं, जैसे डोनेशन देते हैं, लाइफ मेंबर भी डोनेशन देता है, लेकिन शरणागति नहीं होता। लेकिन भक्त कौन है, वो अर्पण भी करता है, शरणागत भी होता है। ही इज अ सरेंडर्ड ऑफरिंग। विदधाम नमस्ते जीवे था, इस प्रकार वो मुक्ति प्रदेश भाग हमेशा कीप दैट इन गोल, लिबरेशन इज माई गोल। और ये श्लोक के बारे में थोड़ा सा और दो मिनट चर्चा करता हूँ। तो जैसे ये श्लोक के चर्चा में चैतन्य चरितामृत श्लोक कोटेड है, खास करके सारवभट्टाचार्य की चर्चा में। तो चैतन्य महाप्रभु सारवभट्टाचार्य का हृदय परिवर्तन किए। सारवभट्टाचार्य ज्ञानी थे, वो यानी मायावादी थे, तो उनको बहुत आर्गुमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, सारवभट्टाचार्य का पूरा हृदय परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद, क्योंकि ज्ञानी लोग बार बार मुक्ति मुक्ति कहते, मायावादी लोग, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहा कि आपका द्वारा संग प्राप्त करने के द्वारा मुझे ऐसा लगता है भागवत का ये श्लोक जो है वो गलत है, उसके अंदर कोई गलती है। तो उन्होंने कहा कि ये भागवत का ये जो श्लोक है, तत्तेन कम पास समीक्षमाण गुंजान कृतम विपाकम विद्वा गुरुधाम नमस्ते जीवे, तो ये मुक्ति पदे लिखा है ना, मीन्स कैसे भागवत में मुक्ति पदे जो शब्द गलत है, उधर भक्ति पदे होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुन के बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार मुक्ति मुक्ति करता था, उसी व्यक्ति को मुक्ति शब्द से ही नफरत हो गया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने सारवभट्टाचार्य का जो भाव को समझे और उन्होंने कहा, बहुत संतुष्ट है बाल सारवभट्टाचार्य का, कि तुम्हारा भाव को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि मुक्ति पदे मतलब क्या है, मुक्ति मतलब विष्णु आंग्री लाभम। श्री बलदेव विद्याभूषण पर नव प्रमेय रत्नावली, नव प्रमेय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुक्ति विष्णु आंग्री लाभम, अमल भजनम तत् हेतुम। अमल भजनम यानी निर्मल अव्यभिचारिणी भक्ति, उसको प्राप्त करने के लिए रास्ता है। तो क्या है वो, भगवान की चरण कमलों की जो सेवा है वही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति मतलब क्या है, विष्णु आंग्री लाभ, भगवान की चरण कमलों को प्राप्ति करना। इसलिए मुक्ति पदे ये शब्द उपर्युक्त है, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति पदे में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु सारवभट्टाचार्य को कहते हैं और उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। तो ये इतना अति महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो सोचा कि और आगे की दो तीन श्लोकों चर्चा की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण श्लोक होने के नाते उसको विस्तृत तरीके से हमने चर्चा किया। कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन।
मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति का प्रवृत्ति अलग अलग है और स्वभाव के अनुसार सेवा करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा और एलैबोरेट करना।
अच्छा प्रश्न। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में एक श्लोक है, प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, पूरा श्लोक याद नहीं है, उसके अंदर कहा गया है ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, निग्रहम करिष्यति, ऐसा एक श्लोक है। तो इससे पता लगता है कि हर एक व्यक्ति का एक प्रकृति एक स्वभाव होता है, इज नेचर। कारणम गुणसंगस्य, अपना जो जन्म है अच्छा या बुरा, जो भी जन्म हुआ किसकी वजह से हुआ, गुणों के प्रभाव से हुआ, सत्व रजस्तम। तो ये आचार्य का ये कुशलता है, उनका एक्सपर्टाइज है, वो जान लेते हैं कि ये कौन सा गुण का है, इसका इसका कौन से गुणों के द्वारा वो मिश्रित है, इसका स्वभाव क्या है। ट्रेडिशनली यानी संप्रदाय परंपरा के हिसाब से प्रत्येक आचार्य एक आचार्य का स्थान ग्रहण करने से पहले उनको आयुर्वेद का प्रशिक्षण दिया जाता है, थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा दूसरा का प्रकृति वो जान सकता है। जैसे आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर का जान है, सबसे पहले आपको प्रकृति जानते हैं, है कि नहीं? तो ही शुड हैव सम नॉलेज, इससे पता लगता है कि इसका स्वभाव क्या है। तो उसके स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा मिलता है। किसी का स्वाभाविक स्वाभाविक आकर्षण रहता है कि वो पैसा के हिसाब रखूँ, ठीक है नहीं? वो 10 रुपये भी लेके जाएगा, वो हिसाब बना के आएगा, 1 रुपये इधर खर्चा किया, 2 इधर था, 3 बचा हुआ है, ऐसा उनका स्वभाव होता है। और किसी को दो हो तो पूरा उड़ा के आएगा, उसको पूछो कहाँ गया तो मालूम ही नहीं, ठीक है नहीं? तो ये आप कितना भी कुछ भी करो, उसको कितना भी वो सर के ऊपर हथौड़ा मार के भी ट्रेनिंग दो, वैसा के वैसा रहे करेगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो उसको क्या करना चाहिए, वो संकीर्तन स्टॉल में बिठाना चाहिए। अगर उसको जो दूसरा प्रकार का व्यक्ति है उसको संकीर्तन स्टॉल में बिठाएंगे वो तो पूरा खाली कर देगा, हो गया हाँ सब बिक गया, बाद में हिसाब दिखाओ तो अरे प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबको हरिनाम बांटो तो मैंने बांट दिया, तो ऐसा जवाब क्या करोगे आप बताओ? युक्तस्य वक्ताम से नियुंजतोपि युक्तः, कैसे युक्त है? प्रकृति स्वभाव, ये बहुत महत्व के जानना चाहिए। तो वैसे भगवान की सेवा करने से स्वाभाविक तरीके से आनंदित होता है जीव, नेचुरली। लेकिन जब वो प्रकृति के अनुसार हो उसका आनंद हमेशा बना के रहता है। अगर वो मुक्त जीव हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इफ इज लिबरेटेड इट डजेंट मैटर। लेकिन अभी वो तीनों गुणों का प्रभाव से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं किए, हमारा मुक्ति कभी सुबह के प्रोग्राम में एकदम मुक्ति है, बाद में नहीं होता है कि नहीं? तो तब जब गुणों का प्रभाव रहता है उसके साथ साथ भक्ति को आनंद का अनुभव करना, ये तभी संभव है जब गुणों के मिश्रण के प्रभाव के अनुसार जो हमारा प्रवृत्ति है उसके अनुसार सेवा प्राप्त हो। तो दैट इज वाई द आचार्य हैज डिवाइज वेज एंड मीन्स टू एंगेज हिज डिसाइपल्स इन कृष्णा सर्विस। वो सारे प्रकार की युक्तियों को बनाते हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन और डेटी वर्शिप है, और डेटी वर्शिप करने वालों को आप बोलो कि आप जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, थोड़ा सा करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन बाद में बोले थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, कुछ कुछ तो बोलेगा समथिंग विल टेल। वो जिसको जिसको प्रवृत्ति है कॉलेज में जाके प्रोग्राम करने का, उधर प्रोग्राम इधर प्रोग्राम करो, उनको बोलो कि डेटी वर्शिप करो, ठीक है, उनको भगवान से प्रीति के लिए उनको थोड़ा सा एक आरती दे सकते, थोड़ा प्लेट दो, लेकिन उनको दिन भर देखे भगवान का सेवा करो बोल तो हो नहीं पाएगा, 1 दिन 2 दिन करेगा। तो इसलिए भक्तों को आनंदित करने का जिम्मेदारी अधिकारियों का है। आनंद मतलब उनके चेहरे में मुस्कुराहट दिखना चाहिए, ही शुड दे शुड वो खुश रहना चाहिए। खुश कैसे रहेंगे? उनकी प्रकृति के अनुसार भगवान की सेवा प्राप्त हो। ये मुक्त हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो प्राय बहुत कम भक्त लोग रहते हैं ऐसा। ऐसे कुछ ब्रह्मचारी एकदम एकदम निवृत्त हो गए अभी शास्त्र का ज्ञान से, रियलाइजेशन से, अभी वो अभी इंतजार कर रहे हैं बस, जैसा अभी खत्म कल मर जाना है तो ऐसा इसी भाव से अभी क्या ऐसी है कि नहीं, ऐसे ऐसी भाव से भी जी रहे हो, जस्ट आर एग्जिस्टिंग। ऐसी परिस्थिति प्राय बहुत कम दिखाई पड़ती, अभी ये ऐसे तो साधु का पहचान है, पहचान ये है कि ऐसा जीता है कि मानो मृत्यु बाजू में बैठा है कि नहीं? वो चेत कितना है, हम तो प्लान बनाते हैं। साधु का पहचान है, उपनिषद कहता है साधु का पहचान ये है, ऐसा जीना चाहे कि क्या ताकि मृत्यु बाजू में। तो इससे प्रकृति स्वभाव महत्वपूर्ण है, और मुक्त होने के बाद भी फिर भी स्वभाव तो स्वभाविक है। आचार्य गण का देखिए, कोई भी दो आचार्य एक जैसा नहीं है, कोई भी दो आचार्य एक जैसे कभी देखा आपने? नहीं। बक्शीहंस ठाकुर प्रभुपाद उनके शिष्य दोनों आचार्य हैं। बक्शीहंस ठाकुर पहली बार जब मद्रास उतरे, मद्रास उतरते स्टेशन में उतरे, बहुत सारे उनको पहले पहले मिले थे विद्वान हैं कि पहले से मद्रास के विद्वान उनसे मिले थे, शिष्य भी बने थे, वो तुरंत आए सेशन में, उतारे उनको, फूल वगैरह बरसाए और नीचे वो सब उनको आदर सत्कार किए। तो एक मतने आप चलिए अभी हमारे घर में आपका सुंदर व्यवस्था है, उधर नहाइए धोइए और आराम कीजिए, बाद में हम चाहेंगे प्रोग्राम में। तो वत्स्यंस ठाकुर सिंह गुरु है, तो उन्होंने क्या कि संन्यास डंडा ऐसा रख के, हालांकि मद्रास में तुम्हारे घर में आने के लिए नहीं आया हूं। वेयर इज अ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो लेक्चर देने आए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में, वो मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे हर जगह है लेकिन उधर बहुत एक्टिव है, पहले वो टाइम में बहुत एक्टिव है, अभी तो खत्म हो गया। उधर उस शहर के सारे विद्वान प्रमुख लोग उसका मेंबर है, उधर उनका लेक्चर था और वैसे प्रोग्राम 5 घंटे के बाद था, लेकिन उनके घर में गए नहीं, डायरेक्टली वेंट, उधर इंतजार किया आने दो इन लोगों को मैं देखता हूँ, और 2 घंटा ऐसा लेक्चर दिया, देने के बाद एनी क्वेश्चंस, उनका इंग्लिश तो जानते ही है और सारे मद्रास में उनको थोड़ा सा गर्व है हम इंग्लिश जानते हैं करके, और वत्स्यंस ठाकुर का सुन के पूरा सिद्धांत वो सब कुछ देख कितना दंग हो गए। 2 घंटा प्रवचन के बाद वत्स्यंस ठाकुर ने पूछा एनी क्वेश्चंस, एक व्यक्ति खड़े होकर पूछा आई हैव ए क्वेश्चन, वत्स्यंस ठाकुर ने पूछा क्या है, शो मी द प्लेस इन मद्रास वेयर यू वॉन्ट टू हैव ए टेम्पल, उधर मैं करके बोलूंगा, ठीक है। और प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अपने शिष्यों को कुकिंग किए, खिलाए, दीक्षा दिए और वो जो परोसे, बाद में वही बर्तन को निकाले, एक्टिविटी टोटली डिफरेंट। वैसे ही श्रीपाद रामानुचार मध्वाचार्य, रामानुचार का स्वभाव ही है, वो खुदाई करेंगे, अपने सर के ऊपर मिट्टी डालेंगे और जाएंगे और सबके साथ में मिलेंगे और सब कुछ करेंगे ये। और दूसरा है मध्वाचार्य, वो जाके केवल राजा या उधर का प्रमुख ब्राह्मण, उनके अलावा किसी से बात ही नहीं करेंगे, दोनों आचार्य स्वभाव है। इसलिए स्वभाव स्वभावगत दोष को देखना नहीं चाहिए, बच्चे का एक स्वभाव होता है, वो तयेव पश्यन्त चिरेण तावकम, कुतिमान कहती है कि पश्यन्त चिरेण तावकम, आनंदित होना चाहिए, दूसरों का भक्ति देख के आनंदित होना चाहिए, कभी उनका स्वभाव के ऊपर नजर ही मत डालो। बच्चा का स्वभाव है चिल्लाना, रोना, कूदना, लेकिन कम से कम मंदिर में तो कर रहा है ना, उसको देख के आनंदित होना। जैसे एक एक युवक का एक स्वभाव होता है, एक युवती का एक स्वभाव होता है, एक 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 स्त्री का, माँ का एक स्वभाव होता है, वृद्ध व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, तो वो स्वभावगत दोष को कभी देखना नहीं चाहिए, वी शुड नेवर सी दैट। स्त्रियों का एक स्वभाव होता है तो पुरुषों का एक स्वभाव होता है, वो स्वभावगत दोष को कभी नहीं देखना चाहिए, उनका भक्ति को देखना, यू शुड ऑलवेज सी द डिवोशन एंड देन अप्रिशिएट इट, तो उससे हमारा भक्ति का वर्धन होता है और उनका भी भक्ति का वर्धन होता है।
जैसे आपने बताया था कि का भाषा इसका बताया था, कैसे बिहेवियर से हम देख सकते हैं कि कैसे वो इतना ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है,
हाँ,
इसको कैसे समझेंगे जो आप बता रहे हो।
भगवद्गीता का 2nd chapter 54th श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा सित प्रज्ञश्च का भाषा, उसका जवाब भगवान 55th श्लोक में देते हैं, एक श्लोक में उसका जवाब दे दिया, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना संतुष्टः चित्तप्रज्ञस्य रोचते, तो चित्तप्रज्ञस्य का भाषा का जवाब ये श्लोक है, प्रजाहाति यदा कामान, वो क्या करता है, सारे कामनाओं को त्याग करता है, भौतिक इच्छाओं को एकदम तुरंत बाजू में रख देता है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, सारे एक नहीं कि थोड़ा सा रख लिया, नहीं सर्वान, क्यों, उनको मालूम है कि मनोगतान ये केवल मन का खेल मात्र है, मुझे ये चाहिए ये मन का खेल है, मन मुझे ठगना चाहता है, द माइंड वॉन्ट्स टू डिसीव मी, इसलिए प्रस्ताव रख रहे हैं, ये लो ये चाहिए तुमको, ये चाहिए तुमको, इसके बिना नहीं रह सकते हो, तो हमको दिग्भ्रमित करने के लिए मन नाना प्रकार का प्रस्ताव रखता है। जैसे आपको आपको ठगने के लिए, आपको उल्लू बनाने के लिए, आपका पैसा लूटने के लिए जो सेल्समैन आता है ना आपके घर में, सेल्समैन आता है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब किसके लिए है, आपको ठगने के लिए है, आपको उल्लू बनाने के लिए, क्या हो आपके, आपका हित चाहते हैं क्या हो, नहीं। तो वैसे ये मन भी ऐसी प्रकार का है, आपके सामने प्रस्ताव रहता है ये लो ये, इससे सुखी हो जाओगे, तो ये भक्त जानता है मनोगतान और क्या है आत्मन्यवान। तो अगर और इच्छाओं को क्या किया जाए, भौतिक इच्छाओं को सुखी कैसे होगा, आत्मा का स्वभाव है आनंदमय अभ्यसात। तो आत्मन्यव आत्मना संतुष्ट, केवल आत्मा की स्तर में जो कार्यों में संतुष्ट रहता है, ये जनरल बिहेवियर ऑफ ए डिवोटी। आत्मन्यव संतुष्ट तस्य स्थितप्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो ये श्लोक जनरल बिहेवियर है, he gives up all material desires, understanding they are the plans of the mind, it is the play of the mind, at the same time उसी समय केवल आत्मा के स्तर में कार्यों को, आत्मा के स्तर में जो इच्छाओं को अपने पास रखता है, ये इज जनरल बिहेवियर का भाषा। सितधिर किम प्रभाषेता, भगवान 56 और 57 श्लोक में कहते हैं, और आगे 58 श्लोक से लेके 64 तक किम आसीत, कैसे बैठता है, व्रजेत किम 65 से लेके आगे 72 तक, ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय का मैप है, ऐसा जान लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ठीक, तंत्राश्रम भाग
हरे कृष्णा, एक सूचना है, प्रभु जी की शाम को 5:30 बजे भागवतम के ऊपर क्लास होगी कृष्ण लीलाएं की, और संध्या के समय 8 से 9 जनरल क्लास होगी, यहाँ चैतन्य चरितामृत पर क्लास नहीं होगी, तो 5:30 बजे आइएगा, कृष्ण लीलाओं के ऊपर प्रभु जी क्लास है।